यह प्रवचन नित्यानंद प्रभु के चरित्र तथा ब्राह्मण दीक्षा के महत्व पर आधारित है, जो कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दिया गया।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आज बहुत ही शुभ दिन है, नित्यानंद जी का आविर्भाव दिवस है। यह वो शुभ दिन है जबकि नित्यानंद जी इस पृथ्वी पर आए थे। नित्यानंद जी के विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं संक्षेप में केवल ये कहूंगा कि भगवान प्रभु नित्यानंद और बालाराम जी में कोई अंतर नहीं है। नित्य आनंद, हमेशा वो बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं नित्यानंद। और जिस प्रकार जब भगवान इस पृथ्वी पर आए थे तो बालाराम जी भी आए थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु जी आए इस पृथ्वी पर तो नित्यानंद जी भी उनके साथ आए थे। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हरिवर्धन दास ठाकुर जी ने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना में नित्यानंद जी के विषय में इस प्रकार से कहा है। उसमें वो कहते हैं, हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा करो कानो करे अमी बोलो दुखी। वो कहते हैं कि प्रभु नित्यानंद आप तो बहुत ही सुखी हो, आप इससे सुखी हो क्योंकि आप तो भक्ति भावना में जुड़े हुए हो, पर मैं जो हूँ बहुत ही दुखी हूँ, बहुत दुखी। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृपा करके मुझे दया दीजिए, क्योंकि आपकी दया से ही मुझे चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की शरण प्राप्त होगी। जो गुरु है वो नित्यानंद जी का प्रतिनिधि है, इसलिए गुरु के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किस प्रकार से भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। तो आज नित्यानंद जी से हमें भीख मांगनी चाहिए। क्या भीख? अक्सर लोग मंदिर जाते हैं, तीर्थ के स्थान में जाते हैं भौतिक इच्छाओं को लेकर। हमें नित्यानंद जी से ये भीख मांगनी चाहिए कि हमारी सारी भौतिक चूटियों को हम जल्दी से जल्दी तोड़ें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और हम जल्दी से जल्दी चैतन्य महाप्रभु जी के शरण में जुड़ सकें। नित्यानंद जी आए थे चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार के कारण को सफल बनाने के लिए। नित्यानंद जी को चैतन्य महाप्रभु जी से भी ज्यादा दयालु माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो अपने साथियों को कहा था, जाओ प्रचार करो, और नित्यानंद और हरिदास को भी जिम्मेदारी, उनकी एक जोड़ी बनी थी बंगाल में घर घर जाकर प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु जी तो अवतारित हुए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए, तो हमारे नवद्वीप शहर में सबसे पतित कौन सा व्यक्ति है। तो उनको सबको पता लगा कि इस शहर में सबसे पतित हैं जगाई और मदाई, क्योंकि इन दो भाइयों ने जन्म तो लिया था ब्राह्मण खानदान में, पर बुरी संगत में गिरकर हर प्रकार का पाप का कार्य वो कर रहे थे और सब उनसे डरते थे। जगाई मदाई की स्थिति ऐसे थी कि अगर कोई व्यक्ति भजन के लिए भी जा रहा होता था तो उस पर वो पत्थर फेंकते थे कि नहीं जाओ, भगवान का कोई नाम तुम नहीं ले सकते। तो लोग डरते थे, इतना डरते थे उनसे। तो हरिदास और नित्यानंद ने सोचा कि अगर किसी प्रकार से हम इन दो को भक्त बना लें तो सब कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया, चैतन्य महाप्रभु जी वैसे तो स्वयं भगवान थे, पर वो आए थे इस पृथ्वी में भक्त के रूप में। तो गए वो जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए, पर जगाई मदाई उनको प्रचार अच्छा नहीं लगा। जब वो गए पहले दिन उनको प्रचार करने के लिए, तो जगाई मदाई ने उनको गाली देकर अपने वो पूरे गली से भगा दिया। वो इतने पापी थे जगाई मदाई। तो उन्होंने जाकर शाम को चैतन्य महाप्रभु जी को अपने प्रचार का परिणाम सुनाया। जैसे कि हम लोग भी जब प्रचार के लिए जाते थे तो प्रभुपाद जी शाम को पूछते थे आज क्या प्रचार हुआ। तो जब नित्यानंद और हरिदास घर लौटे तो चैतन्य महाप्रभु जी से उनसे पूछा आज कितने लोगों को हरि नाम दिया। तो उन्होंने सुनाया कि हमने इन दो भाइयों को भी प्रचार करने का प्रयास किया था, उन्होंने गाली देकर हमें निकाल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा फिर वापस जाओ कल उधर। तो वापस गए और इन दो शराबी भाइयों को बहुत क्रोध आया, फिर तो वापस लौट गए हमें प्रचार करने का। फिर वापस गए, फिर मदाई ने पत्थर फेंका जिसके द्वारा नित्यानंदा जी के माथे से खून निकलने लगा। चैतन्य महाप्रभु जी को तुरंत पता लग गया कि नित्यानंद जी के माथे पर किसने पत्थर फेंका है। वो तुरंत वहां पहुंच गए अपने सुदर्शन चक्र के साथ, और वो सुदर्शन चक्र से इन दो भाइयों को नष्ट करने लगे थे। तो नित्यानंदा ने रोक दिया और नित्यानंदा ने क्या कहा, नहीं, इस कलियुग में कलियुग की प्रजा को इस प्रकार से नहीं हरि नाम के द्वारा जीतना है। और नित्यानंद जी की नम्रता को देखकर जगाई मदाई ने क्या कहा, उनके हृदय में पछतावा आरंभ हो गया और वो सब दोनों भाई नित्यानंद के चरण में गिरे और फिर उन्होंने माफी मांगी और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा हरि नाम दीक्षा ग्रहण की। तो नित्यानंद जी बहुत ही दया दयालु हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते निताय पद कमल कोटि चंद्र शुची तला ये छाय जगत चुराए। नित वो कह रहे हैं कि नित्यानंद जी की शरण लेनी चाहिए, उनके जो शरण हैं वो इतने दया दयालु हैं जैसे कि अगर करोड़ों चंद्रमा हो तो करोड़ों जहां चंद्रमा की कितनी रोशनी होती है, तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी के चरणों की शरण हमें लेनी चाहिए। उनके चरणों के शरण लेकर आप असली छाया प्राप्त कर सकोगे, नहीं तो इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति को केवल भटकना ही पड़ेगा। जुड़ाया युड़ाया, युड़ाया का मतलब है शांति, कष्टों से छुटकारा। तो नित्यानंद प्रभु जी के शरण से ही ये प्राप्त हो सकता है। और नित्यानंद जी के प्रभु के शरण लेने से राधा कृष्ण का प्रेम आपको प्राप्त होएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम गुरु से ऊपर छलांग मारकर सीधा राधा कृष्ण के पास जा सकते हैं, पर नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते नहीं, जब तक नित्यानंद की आशीर्वाद नहीं हो, राधा कृष्ण के प्रेम भाव नहीं समझ सकोगे और राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए वो कहते हैं किसी न किसी रूप से नित्यानंद जी की शरण लो, उनकी शरण लेकर ही आपका जो जीवन है वो सफल हो सकेगा। नीताई न बोले मुखे, सो किसी न किसी रूप से नित्यानंद जी की शरण लो। और जो व्यक्ति ये भौतिक संसार में भटकना चाहते हैं, इंद्रियतृप्ति के कार्य में जुड़ना चाहते हैं, उनसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं क्या कि कृपा करके आप नित्यानंद प्रभु की शरण लो। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सबसे विनती ये है कि आप किसी न किसी रूप से नित्यानंद जी की शिक्षा को समझने का प्रयास करो। नित्यानंद जी और चैतन्य जी की लीला हमें चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में प्राप्त होता है और इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, गुजराती भाषा में हो चुका है। तो आप सब कृपा करके पढ़िए नित्यानंद जी और चैतन्य महाप्रभु जी कि दिव्य लीला को समझने के लिए किसी न किसी रूप से नित्यानंद जी की शरण लो। नित्यानंद जी से यही प्रार्थना करो क्या कि किसी न किसी रूप से हम ये भौतिक संसार से निकल पाए। भौतिक संसार में हर व्यक्ति जो है वो दुखी है और असली सुख प्राप्त हो सकता है केवल चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेकर। चैतन्य महाप्रभु जी हमेशा नित्यानंद जी के साथ रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जी अवतारित हुए हैं इस कलियुग में कलियुग का उद्धार करने के लिए, और उन्होंने एक बहुत सरल साधन दिया है जीवन को सफल बनाने का, वो है हरि नाम का उच्चारण। तो आज इस शुभ दिन पर आपके राधागिरी धारी और जगन्नाथ सुभद्रा बालराम जी के मंदिर में ये दीक्षा का कार्यक्रम किया जा रहा है। हाँ, तो आप सब भक्त जो इस शुभ अवसर पर दीक्षा ले रहे हो, आप सबसे ये निवेदन है, विनती है कि आप इसका पूरा लाभ उठाइएगा। शुभ समय में दीक्षा ले रहे हो, बहुत ही शुभ दिन, और आप दीक्षा ले रहे हो श्रील प्रभुपाद जी गौरताय राधा गिरिधारी और जगन्नाथ सुभद्रा बालराम और गुरु महाराज और अनेक वैष्णव के सामने। नारद मुनि जी श्रीमद् भागवत के 34 स्कंध में कहते हैं, किम जन बेस्त्रीर वेहा शोक सवित्र यज्ञ के कर्म वीर वात रही प्रोक्ते पुमसो वा विद्य विभूत आयुषा। वो कहते हैं कि स्वाभाविक मानव का कि 3 जन्म होते हैं। पहला जन्म है माता के गर्भ से, और ये जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं। दूसरा जन्म प्राप्त होता है हमें जब हम एक प्रमाणिक गुरु से हरि नाम दीक्षा स्वीकार करते हैं, और इस जन्म को सवित्र जन्म कहा जाता है। तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हमें ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है, और इसे कहा जाता है यज्ञ का जन्म। तो शास्त्र में कहा गया है नारद मुनि जी के द्वारा कि व्यक्ति सारे विश्व के धन को भी प्राप्त कर ले, पर अगर वो आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार नहीं करे तो ये जीवन है बिल्कुल व्यस्त माना जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, हरि हरि बिफले जन्म गुनाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण अभाज्य जानिया शून्य पीछा खाइनु। मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, ये जहर पीने के बराबर है। तो इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि हरि नाम दीक्षा किसी प्रमाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, हरि नाम दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, और जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे आज के दीक्षा के कार्यक्रम में 2 ब्रह्मचारी भक्त दीक्षा ले रहे हैं और बाकी अनेक गृहस्थ भक्त हरि नाम दीक्षा ले रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति आप किसी स्थिति में भी स्वीकार कर सकते हो। ये नहीं कि भक्ति को स्वीकार करने के लिए आपको अवश्य ही ब्रह्मचारी ही होना चाहिए। ब्रह्मचारी हो तो बहुत बेहतर है, आप प्रचार कर सकते हो, बड़ी सरलता के साथ जीवन को बिता सकते हो। पर अगर आप गृहस्थ आश्रम में जुड़े हुए हो तो उस आश्रम में रहकर भी आप भगवान के शरणागत हो सकते हो अगर आप अनेक नियमों का पालन करो। क्या है ये नियम? 16 माला का जाप करना चाहिए हर व्यक्ति को। 16 माला के जाप के साथ हम 4 नियमों का पालन करते हैं। क्या? कोई मांस अंडा मच्छी नहीं, को और जो मांस अंडा मच्छी के अलावा जो हम खाएं भी पहले उसको भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। अगर हम वेजिटेरियन भी बन जाएं, पर अगर हम कृष्णा प्रसाद नहीं खाएं तो भी हम पाप खा रहे हैं। खैर, मांस खाने से छोटा पाप है, पाप है जब भी। इसलिए भक्तों का सिद्धांत यह है कि हम केवल कृष्णा प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो आप सब जो दीक्षा ले रहे हो, दीक्षा लेने के इच्छुक हो, जो दीक्षा ले चुके हो, आज सबका यह नियम यह होना चाहिए कि आप केवल कृष्णा प्रसाद ही स्वीकार करोगे, इसलिए जो भगवान को भोग लगाओ वही खाओ और कुछ मत खाओ। फिर कोई नशे की चीज नहीं और कोई जुआ वगैरह नहीं किसी प्रकार का, कोई पढ़ाई स्थिति से संबंध नहीं। गृहस्थ जीवन, अगर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे तो बिल्कुल शास्त्र के आधार पर होना चाहिए और इंद्रिय तृप्ति इत्यादि कार्यों के लिए नहीं। जो गृहस्थ गृहमेदी में अंतर क्या है, गृहस्थ शास्त्र के आधार पर जीता है और उस स्थिति का उपयोग करता है भगवान की उपासना के लिए। गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब वो स्थान जहां से आप भगवान को प्राप्त कर सको। तो इसलिए वैदिक शास्त्र के अनुसार ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। आश्रम शब्द साथ में जुड़ा हुआ है, अर्थ यह है वो स्थिति जिसके द्वारा आप भगवान को समझ सको, भगवान की सेवा कर सको। तो हमें जो गृहस्थ हैं उन्हें गृहस्थ आश्रम में शास्त्र के अनुसार रहना चाहिए, पाप के कार्यों से बचना चाहिए और 16 माला का जाप करना चाहिए। जो भक्त मंदिर में नहीं रह सकते, जो भक्त घर में रह रहे हैं मंदिर नहीं आ सकते, तो उनसे निवेदन किया जाता है कि मंगल आरती गुरु पूजा वो घर में करें अगर आप मंदिर नहीं आ सकते। कहने का अर्थ यह है कि ये जो भक्ति के नियम हैं जिन्हें हम वैदिक भक्ति के नाम से जानते हैं, उनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो मंदिर में रहता है या घर में रहता है। अगर वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो नियमों का पालन करना अवश्य है। तो इसलिए आप गृहस्थ भक्त जो कि बाहर रहते हो, आपसे ये निवेदन है कि आप घर में मंदिर बना के रखिए, ऑल्टर बनाइए, वहाँ रोज सुबह आप मंगल आरती कीजिएगा। 4:30 बजे नहीं कर सकते तो बेशक 5 बजे कर लो, पर रोज हर भक्त को ये जो प्रार्थनाएं हैं संतरा दावा श्री गुरु चरणा पद्मा, इन सब का उच्चारण रोज करना चाहिए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। हरे नाम के जप के साथ 10 नाम अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो आप सब भक्तों को ये 10 नाम अपराध बहुत अच्छी तरह आना चाहिए और अच्छी इन अपराधों को केवल तोते जैसा रटना नहीं चाहिए, इन अपराधों का जो अर्थ है वो भी हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि जितनी पवित्रता के साथ हम हरे नाम का जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति हम कर पाएंगे और उतनी अधिक मात्रा में आप भगवान को समझ पाओगे। तो 10 नाम अपराध हैं। सबसे पहला है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा के लिए। तो भौतिक संसार में एक हर व्यक्ति की एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती है, पर भक्ति मार्ग में प्रवेश करके ईर्ष्या इत्यादि भावनाओं को हमें उखाड़ देना चाहिए और भक्ति मार्ग में आकर हमें ये समझते हुए कि भगवान हर चीज के स्वामी हैं, हमने एक दूसरे से के व्यवहार में वैष्णव अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ईर्ष्या के कारण आलोचना नहीं करनी चाहिए और खास करके उन भक्तों की जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा के लिए। शास्त्रों के अनुसार एक परम भगवान है और 33 करोड़ देवता और देवियां हैं। तो दूसरा अपराध यह है ये सोचना कि देवता देवियां परम भगवान के समान हैं या उनके बराबर के हैं। देवता देवियां जो हैं उनके अधीन हैं, उनसे स्वतंत्र नहीं हैं। तो हम देवता देवियों को आदर देते हैं, ये नहीं कि हम उनको आदर नहीं देते, पर हमारा स्नेह सेवा भावना ये हम परम भगवान को ही केवल देते हैं। तीसरा गुरु अवज्ञा, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना, ये समझना कि गुरु कोई साधारण पुरुष है। असल में गुरु कोई जादूगर नहीं है। हमारे देश में कई लोग सोचते हैं कि जो गुरु है वो थोड़ा जादूगर होएगा या कुछ चमत्कार दिखाएगा। गुरु केवल एक पोस्टमैन है। क्या है, क्या कार्य है पोस्टमैन के रूप में? जो संदेश गुरु परंपरा के द्वारा आ रहा है वही संदेश आगे आपको वो पहुंचा देता है, ना वो एक शब्द उसमें कम करता है ना एक शब्द उसमें जोड़ता है। वही गुरु परंपरा का संदेश यथारूप आपके समक्ष रखता है और अपने आचरण के द्वारा धर्म के नियमों को प्रस्तुत करता है। ये नहीं कि दूसरों को तो हम कहें सब पाप के कार्य त्यागो और हम स्वयं पाप के कार्य में जुड़े। तो गुरु की यही इच्छा रहती है कि हर शिष्य भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। गुरु की यही भावना रहती है कि शिष्य काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से बचे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। और वो ये जानता है कि भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हरि नाम और वैदिक भक्ति की आवश्यकता है। इसके साथ प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने बड़े प्रयास करके परिश्रम के द्वारा लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है और आज हमें हमारा भाग्य यह है कि प्रभुपाद जी ने तो अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था पर आज लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में इन ग्रंथों का अनुवाद हो चुका है या हो रहा है। खास करके आप लोग जो हिंदी गुजराती पढ़ते हो, हिंदी गुजराती में लगभग सब प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ प्रकाशित हो गए हैं। तो ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, जो दीक्षा ले चुके हैं, जो दीक्षा ले रहे हैं और जो दीक्षा लेना चाहते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ो। और इस्कॉन के भक्त केवल प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है उस ज्ञान की रचना प्रभुपाद जी ने उनके ग्रंथों में की है। और अगर किसी विषय का वर्णन प्रभुपाद जी ने नहीं किया तो उस विषय के जानने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर हम प्रभुपाद जी के 100 ग्रंथों को ध्यान से पढ़ लें इस जीवन में तो हमारा जीवन अवश्य ही सफल रहेगा और हम भगवत प्रेम भी प्राप्त करेंगे और भगवान के धाम भी लौटेंगे। तो ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए और गुरु के आदेश का पालन। गुरु का आदेश क्या है? हरे नाम का जाप अच्छी तरह करो, रोज किताब पढ़ो, रोज वैदिक भक्ति मंगल आरती वगैरह में आओ और आप सेवा करो और माया से बचो। शास्त्र में कहा गया है कि सारे नियमों का एक मुख्य उद्देश्य है क्या, कि आप हमेशा कृष्णा को याद करो और कभी कृष्णा को भूलो नहीं। तो चाहे आप धंधा करते हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी करते हो, मंदिर में रहते हो, जीवन को इस रूप से चलाओ कि आप हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण कर सको और कभी भी उनको भूलो नहीं। ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ही आपका मन दिव्य सूचना संदेश का स्मरण नहीं करेगा तो भटकेगा कहाँ, पाप के कार्य में। तो इसलिए भक्त को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप सावधानी से नहीं चलोगे तो कोई आपका घर भी चुरा सकता है, कोई साथ में आपके साथ कुछ सामान हो महंगा वो भी चुरा सकता है। तो इसलिए हमें सावधानी से चलना चाहिए। फिर वैदिक शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि वैदिक शास्त्र की रचना किसी साधारण व्यक्ति ने की है। हमारे देश में भी अफसोस की बात यह है कई लोग ये सोचते हैं कि वैदिक शास्त्रों का आज इस आधुनिक युग में कोई स्थान नहीं है, पर प्रभुपाद जी ने ये बता दिया स्थापित करके कि सारे विश्व में लोग इस वैदिक शास्त्र की शिक्षा को आज भी प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में। तो हमें वैदिक शास्त्रों की जो शिक्षा है उसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वैदिक शास्त्र हैं इनकी रचना कोई साधारण व्यक्ति ने की है या इस आधुनिक युग में इस वैदिक शास्त्रों के उपदेश का हम लाभ उपयोग नहीं कर सकते, ऐसा सोचना भी पाप है। महामंत्र ये कहा गया है शास्त्र में कि महामंत्र के उच्चारण के द्वारा भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो नस्तेव 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 एव गति रजता। हरे के नाम हरे के नाम हरे के नाम हरे के नाम के उच्चारण के अलावा और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पाप जो आपने किए हैं ये सब मिट सकते हैं अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करो इस जीवन के अंत तक। ये नहीं एक साल दो साल पांच साल करेंगे फिर बंद कर देंगे, नहीं, अंत तक आप ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। और जहां तक हो सके 10 अपराधों से बचते हुए। तो अगर आप हरे नाम का जाप करोगे सावधानी से और बाकी भक्ति के नियमों का पालन करोगे तो और किसी मंत्र उपासना पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो ये सोचना कि ये हरि नाम की महिमा का वर्णन जो है शास्त्र में ये किसकी कल्पना है, ये पाप है। हरि नाम के शब्दों के उच्चारण के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, हमें भक्ति दो, भक्ति दो, सेवा दो, सेवा दो। और जब आप श्रद्धा के साथ इस प्रकार की भीख मांगोगे फिर आपको भक्ति का मौका मिलेगा। सातवां नाम अपराध है हरे नाम के बल पर पाप करना। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं अभी तो हम भक्त बन गए, अभी हम इतने समय से जप कर रहे हैं, अभी हमारे इतने पाप के बोझे मिट गए हैं, अभी हम नया पाप कर सकते हैं और फिर से हम कुछ तपस्या उठा लेंगे। जैसे कि आप कोई व्यापारी कर्जा लेता है, फिर कर्जा चुका देता है तो क्या सोचते हैं अभी मैं नया कर्जा ले सकता हूँ। तो हम सोचते हैं कि तीर्थ के स्थान में जाएंगे, दीक्षा लेंगे, हरिनाम करेंगे, अभी हम पाप मिट जाएंगे, फिर नया पाप करने का हमें अधिकार हो जाएगा। नहीं, हरिनाम के बल पर कि जप के बल पर पाप नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम भक्त बन गए हैं तो अभी हम पाप वगैरह करेंगे, भौतिक सुख इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागेंगे तो उसका हमें भय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो हरिनाम की दीक्षा ले ली है, हमें तो हरिनाम 16 माला हम रोज करते हैं, थोड़ा थोड़ा गलत काम भी करेंगे कोई कुछ कहेगा नहीं। तो नहीं, भक्त जो है किसी प्रकार से भगवान पर बोझा नहीं बनना चाहता। भक्त जो है भगवान से किसी प्रकार की भीख नहीं मांगता, एक ही विषय की भीख। और वो विषय क्या है? हाँ, भगवत सेवा। चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, नर्जनम सुंदरम काविताम वा जगदीश कमये। हे प्रभु, मुझे ना धन चाहिए, ना भौतिक शिष्य, ना सुंदर स्त्री, मुझे केवल भक्ति का मौका चाहिए हर जन्म में। ठाकुर भक्ति नो जी कहते हैं, हे प्रभु भगवान, मुझे जन्म देना है तो एक कीड़े के रूप में दो, पर वैष्णव के घर में, क्योंकि वैष्णव के घर में भगवान का हरे नाम सुनने का मौका तो मिलेगा। तो हरे नाम के बल पर हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें पाप अपराध दोष करने से बहुत डरना चाहिए। कहा जाता है वैष्णव जो है हथियारों से नहीं डरता, दुश्मन से नहीं डरता, पर वैष्णव अपराध करने से डरता है। तो इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना चाहिए और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हरि नाम का उच्चारण कर्मकंड कार्य के बराबर है। कर्मकंड कार्य तो भगवान से एक सौदा होता है, व्यापारी सौदा। जैसे आप नौकरी करते हो, धंधा करते हो, इतना पैसा दोगे इतना माल मिलेगा। तो हरिनाम के द्वारा हम कर्मकंड नहीं करना चाहते। कर्मकंड का क्या अर्थ, जहाँ की इंद्रिय तृप्ति की भावना हो। कर्म हरिनाम के द्वारा हम शुद्ध भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं, हम हरिनाम के द्वारा कर्मकंड कार्य नहीं करना चाहते। फिर अश्रद्धालु व्यक्ति को प्रचार करना, एक तरफ से तो चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं जिसको तुम देखो उसको ही प्रचार करो, जारे देखो ताए कहो। तो हर एक के चेहरे में क्या लिखा हुआ होता है, ये श्रद्धालु है, ये अश्रद्धालु है, लिखा होता है मीरा रोड में लिखा हुआ है हर एक के चेहरे में? नहीं। तो आप हर व्यक्ति से कहो हाथ जोड़कर, कृपा करके हरि नाम का जाप कीजिएगा। हरि नाम का जो गहरा अर्थ है वो आप बताइएगा, केवल जब उसमें थोड़ी श्रद्धा आना आरंभ हो जाए परम भगवान के प्रति। जैसे कि आप चाहे किसी को भी मिलो सड़क में और कोई वो आपसे पूछे आपका नाम क्या है, आप नाम बता देते हो। पर अगर कोई पूछे आपका घर का टेलीफोन नंबर क्या है, घर का एड्रेस क्या है, कितना पैसा है बैंक में, आप बताओगे? नहीं बताओगे। वो बताओगे अगर जरा ज्यादा दोस्ती हो जाए। तो हरि नाम का जाप, हरि नाम की महिमा सबको सुनाओ, सबको कहो हरे कृष्णा। हमारे तो भक्त लोग जहाँ नौकरी भी करते हैं विदेशों में, वहाँ उनके साथी सब कहते हैं हरे कृष्णा, उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सब बंद कर देते हैं। तो सबको भगवान का नाम दो। भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं सबसे प्रिय भक्त कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। तो आपका हरिनाम के हरिनाम के विषय में प्रचार हर व्यक्ति को करना चाहिए, पर हरिनाम का जो गहरा अर्थ है वो हम सुना सकते हैं, बता सकते हैं, जब उसमें थोड़ी श्रद्धा पैदा हो जाए। और दसवां नाम पद क्या है, पूर्ण विश्वास न रखना हरि नाम के जप में, और हरि नाम के जाप करते हुए भी इतनी भौतिक असत्य अशक्तियों इच्छाओं को रखना। तो हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं क्यों, क्योंकि हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य जिनके द्वारा करोड़ों भौतिक विचार हृदय में हैं, उनको वश में लाना चाहते हैं और नष्ट करना चाहते हैं। तो कई बार देखा जाता है कि शुरू शुरू में जब हम भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं हम बहुत उत्साहित होते हैं, और हम देखते हैं कि काम क्रोध लोभ ये सब आस्ते आस्ते पिघलने लग जाते हैं, पर फिर हम देखते हैं कि वही भक्त थोड़े 3-4 साल 5 साल बाद वही दुश्मन आध्यात्मिक जीवन के फिर से उगने लग जाते हैं। तो क्या कारण है इस विषय की चर्चा भगवतम के 4th स्कंध में है। तो भगवतम में कहा गया है, कई बार एक बीमार व्यक्ति इलाज कराता है डॉक्टर से, पर थोड़ा ही ठीक होने पर वो दवाई लेना बंद कर देता है या दवाई लेने में लापरवाही करता है, एक दिन लेता है एक दिन नहीं लेता, तो फिर क्या होता है वही बीमारी फिर से आ जाती है, ठीक है ना, रिलैप्स हो जाता है। तो उसी प्रकार भक्ति में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम जैसे गंभीरता उत्साह के साथ जप वगैरह करते हैं, फिर हम थोड़े समय बाद ये सोचने लगते हैं हम तो अभी पुराने डिवोटी बन गए, हम तो 3-4 साल पुराने हैं 5 साल पुराने हैं, जप करने में हम लापरवाही करते हैं, मंदिर आने में लापरवाही करते हैं, सेवा करने में लापरवाही करते हैं, वैदिक भक्ति का पालन करने में लापरवाही करते हैं। तो जिसके द्वारा क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी आध्यात्मिक दवाई को कम करते हो आपकी भौतिक इच्छाएं जो हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं वो हमें तंग करना आरंभ कर देती है। हरिदास ठाकुर दिन में 3 लाख बार जाप करते थे हरि नाम का, बूढ़ी आयु में चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें कहा हरिदास तुम तो जिंदगी भर 3 लाख बार जाप करते आए हो, अब जरा विश्राम कर सकते हो ज्यादा। हरिदास ने इनकार कर दिया, और जब तक हरिदास ठाकुर 3 लाख बार जाप खत्म नहीं करते थे वो कुछ चर्चा भी नहीं करते थे और एक बूंद पानी भी नहीं पीते थे। खैर हम ये तो नहीं कह रहे कि आप 3 लाख बार जाप रोज कीजिएगा, कई भक्त तो ऐसे हैं जो 16 माला खत्म करने से पहले प्रसाद भी नहीं स्वीकार करते। तो इस प्रकार का सिद्धांत हमारा रहना चाहिए कि हमने माला का जाप सुबह के समय ही करना है, और माला का जाप सावधानी से करना है, लापरवाही से नहीं। ये नहीं कि माला का जाप भी कर रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, टेलीफोन में भी बात कर रहे हैं और घर वालों से भी बात कर रहे हैं, 4-5 कार्य एक साथ नहीं। हरे नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप हरे नाम का जप करते हो भगवान स्वयं वहां उपस्थित होते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चेतन रास विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वम नाम नामिनाह। तो भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं है। तो जब आप हरे नाम का जाप करने के लिए बैठते हो तो आपको यही विचार रखना चाहिए कि ये भगवान मेरे साथ बैठे हैं अभी, और जितने सावधानी से आप करोगे उतने ही जल्दी भगवान की दिव्य लीला आपको प्रकट होगी, और उतनी ही जल्दी आप अपने आप को ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति के विचारों से बचा सकोगे। माया तेज है पर भगवान की भक्ति माया से भी ज्यादा तेज है। माया देवी जो है भगवान के पीछे छुपती है। कृष्णा सूर्य समा माया हाया अधिकारा, यहाँ कृष्णा ना यहाँ कृष्णा तो ही नहीं माया अधिकारा, यहाँ कृष्णा है वहां माया का अधिकार ही नहीं है। जैसे चोर पुलिसमैन के सामने तो नहीं आता, आजकल आ जाते हैं क्योंकि आजकल लगभग सब एक ही हैं, पर असली चोर असली पुलिसमैन के सामने नहीं आता। तो उसी प्रकार माया कृष्णा के सामने नहीं आती, और कृष्ण इसलिए हरि नाम का जाप कीजिएगा सावधानी से, ये 4 नियमों का पालन कीजिएगा और सावधानी से जाप करो। जब आपका 16 माला का जाप का समय है तो मां घर में अगर मंदिर है तो घर में एकांत में बैठकर करो या मंदिर में आकर करो, पर ये नहीं कि माला का जाप भी करना, दूसरों से बात भी करना, फिर आप माला के जाप का पूरा लाभ नहीं उठा सकोगे। अगर पूरा लाभ भगवान ने हमें माया से बचने के लिए बहुत अच्छा साधन दिया है, भगवान कहते हैं देवेश गुणमाय मामा माया दुरतया, इतनी गुणी माया में बहुत तेज है, तो आप लोग माला का जाप बहुत सावधानी से कीजिएगा, और जितने सावधानी से माला का जाप करोगे उतने ही जल्दी आप आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ोगे। ये कंठी माला इसलिए पहनते हैं कि हम हमेशा याद करें कि हम भगवान के कुत्ते हैं। जब मृत्यु का समय आता है तो यमराज जी जब देखते हैं कि इस व्यक्ति के गले में कंठी माला है तो उसको सीधा जाने जाते हैं भगवान के पास। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप कंठी माला केवल पहन लो और बाकी नियमों का पालन नहीं करो और सोचो कि अभी भगवान के धाम लौटने की टिकट मिल गई। इतना एहसान नहीं है, पर भक्त जो है वो कंठी माला हमेशा पहनना चाहता है। तभी मैं आप भक्तों को आपकी माला दूंगा और आध्यात्मिक नाम दीक्षा के समय जो नाम दिए जाते हैं ये सारे नाम शास्त्रों पर आधारित होते हैं और ये सारे नामों की आध्यात्मिक कदर है। दीक्षा के समय हर व्यक्ति ये जानना चाहता है मेरा क्या नाम होएगा, थोड़ा हृदय में बेचैनी रहती है, पर ये सारे नामों में एक ही प्रकार की दिव्य शक्ति है। ये मत सोचना बाद में अरे उस भक्त को इतना अच्छा नाम मिला मुझे इतना अच्छा नाम नहीं मिला, या सारे नामों में एक ही प्रकार की दिव्य शक्ति है, चाहे आपका नाम कृष्णा दास हो या कोई और हो। आप ये मत सोचिए कि क्योंकि सारे नाम भगवान के नाम है या उनके भक्तों के नाम है, वो नामों के आगे दास जोड़ दिया जाता है। क्यों? दास का अर्थ है सेवक, हम भगवान के सेवक हैं। तभी आप लोगों को आध्यात्मिक नाम दिया जाएगा क्योंकि दीक्षा के वक्त आप एक नया जन्म स्वीकार करते हो, इसलिए आपको नया नाम दिया जाता है। और आप गुरु के प्रभुपाद के सामने, गुरु के सामने, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम के सामने, घोर निताई के सामने, राधा गिरधारी के सामने, अग्नि के सामने और सब वैष्णव के सामने ये वचन दे रहे हो आज। 16 माला का जाप करोगे, 4 नियम का पालन करोगे वगैरह, तो अगर आप नहीं करोगे तो दोष आप पर आएगा। तो इसके लिए जरूर प्रयास कीजिएगा क्योंकि ये जिम्मेदारी आप भगवान के सामने ले रहे हो। अगर किसी को लगता है वो नहीं ले सकता तो बेशक दीक्षा नहीं है, पर अगर दीक्षा लेना है तो ये जिम्मेदारी जरूर निभाना कृपा करके। हरे कृष्ण।